सब बोलिए। राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरावनचारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जयो राधा माधव कुंज बिहारी, जयो राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, नाम संकीर्तन की। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण की, श्री वृंदावन धाम की, निताई गौर प्रेमानंदे। सर्वशास्त्राभिपीयुष सर्ववेदेक सत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकेक दृक्पद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेव गौरवाणीपचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां प्रावणेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। हरे कृष्ण। तो आज हम ग्रंथ राशि मद भागवत महापुराण के स्कंद 8 अध्याय क्रमांक 5 और श्लोक संख्या 29 क्या है, हाँ 29। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज श्री वृंदावन धाम में हम श्रीमद् भागवतम की चर्चा श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। तो श्लोक दोहराइए। य एक वर्ण तमस परम तत् अलोकम अव्यक्तम अनंत पारम आसाम चकारो पशुपर्णमेनम उपासते योगरथेन धीरः य एक वर्ण तमस परम तत् अलोकम अव्यक्तम अनंत पारम आसाम चकारोप सुपर्णमेनम उपासते योगरथेन धीरः। य एक वर्ण तमस परम तत् अलोकम अव्यक्तम अनंत पारम आसाम चकारोप सुपर्णमेनम उपासते योगरथेन धीरः। माताजी 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 बोलिए। अनुवाद शब्दानुवाद अनुवाद तथा तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की बोलिए। यह जो भगवान एक वर्णम चरम जो शुद्ध सत्वगुणी है तमसह भौतिक जगत के अंधकार को परम दिव्य तत् वह अलोकम जिसे देखा नहीं जा सकता अव्यक्तम अप्रकट अनंत पारम असीम भौतिक काल तथा दिक की माप के परे आसाम चकार स्थित उपसुपर्णम गरुड़ की पीठ पर एनम उनको उपासते पूजते हैं योग रथेन योग के यान द्वारा धीरा गंभीर व्यक्ति जो भौतिक क्षोभ से अविचलित रहते हैं। अनुवाद श्री भगवान शुद्ध तत्व में स्थित हैं, अतएव एक वर्ण ओमकार प्रणव है। क्योंकि श्री भगवान अंधकार माने जाने वाले दृश्य जगत से परे हैं। एक सुंदर वर्णन ये है, विशेषता ये है कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं, अगर थोड़ा बहुत संस्कृत का ज्ञान है, एक आसानी से समझने लायक बात हम आपको बताते हैं, हम अगर उसको ध्यान देंगे तो हमारा बहुत अच्छा अभ्यास होगा। देखिए, जैसे एक श्लोक है, संस्कृत का श्लोक है, उसके हर एक जो शब्द है उसका अनुवाद प्रभुपाद जी अपने ट्रांसलेशन में करते हैं। तो जैसे अभी ये अनुवाद देखिए, वे एक वर्ण ओमकार प्रणव है, तो वो एक वर्ण का अर्थ हो गया। और फिर दूसरे लाइन में कहते हैं, चूंकि श्री भगवान अंधकार माने जाने वाले दृश्य जगत से परे हैं, ये किसका अनुवाद हुआ? तमस परम। हाँ, आप श्लोक को देखेंगे तो एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर आगे कहते हैं अतएव वे भौतिक नेत्रों से नहीं दिखते। ये किसका अनुवाद हुआ? अलोकम और अव्यक्तम, अलोकम अव्यक्तम, इसका अनुवाद हो गया। फिर आगे बढ़िए, फिर भी वे दिक् या काल द्वारा हमसे पृथक नहीं होते अपितु वे सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। ये किसका अनुवाद हुआ? अनंत पारम। देख रहे हैं कितना सुंदर अनुवाद कर रहे हैं। अच्छा आगे, अपने वाहन गरुड़ पर आसीन उनकी पूजा, अपने वाहन गरुड़ पर आसीन, इतना किसका अनुवाद हुआ बताइए? सुपर्ण, गरुड़ को संस्कृत में कहते हैं सुपर्ण। तो श्लोक में आप देखेंगे कि आसाम चकार सुपर्ण मेनम, इसका अनुवाद हो गया अपने वाहन गरुड़ पर आसीन क्या करते हैं? उनकी पूजा कौन करते हैं? क्षोभ से मुक्ति पा चुके व्यक्तियों के द्वारा। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद। देखिए, क्षोभ से मुक्ति पा चुके व्यक्तियों के द्वारा योग शक्ति से की जाती है। लास्ट लाइन, उपासते, श्लोक श्लोक में आप देख लीजिए, उपासते योग रथे न धीरा, ये श्लोक का अंतिम लाइन जो है ये प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं। और ऐसे हम सभी उनको सादर नमस्कार करते हैं। यहां तो वो नमस्कार करते हैं, ये दूसरे श्लोक से लिया गया है। मतलब प्रसंग ये है कि आप सब प्रतिदिन भागवत पढ़ते ही आ रहे हैं, इसी कक्षा में जो आते हैं, ब्रह्मा आदि देवतागण खीर सागर, ब्रह्मा, हरि बोल, हरे कृष्ण, आवाज आ रही, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण हरे, थोड़ा इसको लूज, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्णा। ये चेंज कर दो, ये बंद हो जाता है ना, चेंज कर दो। हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा आदि देवतागण खीर सागर के तट में जाके स्तुति कर रहे हैं भगवान को। तो ये स्तुतियां अभी चल रही है, ये प्रसंग है जो लोग नए आए हैं या इसको एक बार रिवीजन करने के लिए। तो स्तुति में, आज के स्तुति में कहते हैं, थोड़ा श्लोक दिखाइए तो, अच्छा तात्पर्य पढ़ना है, रुक, तात्पर्य। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं श्रीमद् भागवतम 4:23 है। इस भौतिक जगत में सत्व रजस तथा तमस ये तीनों भौतिक प्रकृति के गुण पाए जाते हैं। इन तीनों में से सत्व गुण ज्ञान का आधार है, रजोगुण ज्ञान तथा अज्ञान के मिश्रण को लाने वाला है, किंतु तमोगुण अंधकार से भरा होता है। अतएव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तमो तथा रजोगुण से परे होते हैं। वे ऐसे पद पर होते हैं जहां सत्वगुण या ज्ञान रजो तथा तमोगुण द्वारा विचलित नहीं होता। यह वसुदेव पद कहलाता है। इस वसुदेव पद पर ही वासुदेव अर्थात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो सकते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण इस लोक में वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि श्री भगवान भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। अतएव जिन लोगों में इन तीनों गुणों की प्रधानता होती है उन्हें वे नहीं दिखते। अतएव मनुष्य को धीर बनना चाहिए। आज का जो चर्चा है उसका एक ही दो अक्षर में छोटा टाइटल दिया जाए तो वो है धीर। कहते हैं अतएव मनुष्य को धीर बनना चाहिए या भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा अविचलित रहना चाहिए। योग का अभ्यास वही कर सकता है जो इन गुणों के विक्षोभ से मुक्त हो। अतएव योग की परिभाषा इस प्रकार की जाती है, योग इंद्रिय संयम। जैसा पहले बताया जा चुका है, हम सभी इंद्रियों द्वारा विचलित होते रहते हैं, साथ ही हम बहिरंगी शक्ति द्वारा लादे जाने वाले भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा विचलित किए जाते हैं। बद्ध जीवन में जीव जन्म मृत्यु के चक्रवात में तेजी से घूमता है, किंतु जब कोई विशुद्ध सत्व के दिव्य पद पर स्थित होता है तो वह गरुड़ की पीठ पर आसीन श्री भगवान का दर्शन पा सकता है। ब्रह्मा जी ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करते हैं। तो इस श्लोक में ब्रह्मा जी उन परम भगवान का वर्णन कर रहे हैं। क्या क्या विशेषण शब्द प्रयोग करते हैं इसमें देखिए, यह एक वर्णम, वो भगवान जो है परमात्मा एक वर्णम। तो प्रभुपाद जी यहां अनुवाद करते हैं कि वो विशुद्ध सत्व में है और वही ओमकार है, प्रणव सर्व वेदेशु ओमकार है वो। और एक ज्ञान वो परमात्मा ज्ञान स्वरूप तथा उसके बाद क्या कहते हैं तमसा परम तत् अर्थात वो प्रकृति से परे हैं। ये जो भौतिक जगत है ये रजोगुण तमोगुण प्रधान है, ये सभी प्रकार गुणों से परे हैं, तमसा परम तत्। और वो कैसे हैं अलोकम, अलोकम अर्थात अदृश्य। और वो कैसे हैं अव्यक्तम अर्थात निर्विकल्प। और देश काल वस्तु के सीमा से परे हैं, परिच्छिन्न है, अनंत पारम। और कैसे हैं वही परमात्मा जीव के नियामक के रूप में जीव के सन्निकट रहते हैं, इसलिए सपर्ण सुपर्ण। और एक अर्थ है कि वही भगवान गरुड़ के ऊपर गरुड़ ध्वजे गरुड़ के ऊपर विहार करते हैं, बैठ के विहार करते हैं। तो ऐसे भगवान को एवं धीरा योग रथेन उपासते, जो योगी होते हैं कोई भी योगी, जैसे हम लोग यहां भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति योगी योग रथेन उपासते, अपनी भक्ति योग के द्वारा उनकी उपासना करते हैं। ये इस श्लोक में तो श्रीधर स्वामी पाद बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि या उप सभी जीवों के नियामक होने के कारण वो परमात्मा जीवों से श्रेष्ठ हैं। इस बात का प्रतिपादन करते हैं इस श्लोक से, एक वर्णम इत्यादि श्लोक से करते हैं वो। तो यह उपसुपर्ण जीव ये हो गया। फिर आगे कहते हैं कि कैसे, जैसे हम लोग जानते हैं उदाहरण, एक वृक्ष के ऊपर दो पंछी है, दो चिड़िया है, एक है आत्मा दूसरे है हाँ परमात्मा। ये सुपर्ण शब्द का अर्थ उन प्रकार ऐसे कहते हैं वो, द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया समानं वृक्षं परि सस्व जाते इति श्रुते। श्रुति का एक श्लोक उद्धृत करके कहते हैं, जैसे एक पेड़ के ऊपर दो पंछी हैं, दो पक्षी हैं, उसी प्रकार से शरीर रूपी वृक्ष में दो आत्मा है, एक है आत्मा दूसरे है परमात्मा। अच्छा, वही यदवा भक्त रक्षणार्थ गरुड़स्योपरि य उपविष्ट इत्यर्थ। और सुपर्ण का अर्थ बताते हैं, या ये भी है कि गरुड़ के ऊपर बैठकर वो अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अभी अभी एक अध्याय पहले आपने इसी मंदिर में, इसी हॉल में गजेंद्र उदाहरण सुना होगा, तो उसी गरुड़ के ऊपर बैठ के भगवान आए थे अपने भक्तों को उद्धार करने के लिए। आगे क्या कहते हैं, तरही देहस्थत्वात् भक्त रक्षणादि क्रिया आवेश जीवसायम स्यात्राह। तो इसलिए क्योंकि वो इस शरीर रूपी वृक्ष में परमात्मा के रूप में वास करते हैं, और साथ ही साथ गरुड़ के ऊपर बैठकर हमेशा भक्तों को रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं, इसमें आवेश रहते हैं, इसलिए वो एक वर्ण, माने एक वर्ण शब्द का सिद्धार्थ स्वामी पर इतनी लंबी व्याख्या कर रहे हैं सरल भाषा में, कि वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानेय को स्वरूपम, वो परमात्मा भगवान ज्ञानेय को स्वरूपम है, और वो जीव शरीर रूपी वृक्ष में जीवात्मा के साथ रहते हैं, और गरुड़ के ऊपर वास करके, गरुड़ के ऊपर बैठ के वो हमेशा तत्पर रहते हैं भक्तों की रक्षा के लिए। फिर आगे कहते हैं तमस, तमस का अर्थ है प्रकृति परम, इस वो इस प्रकृति से परे हैं। अलोकम अदृश्यम अव्यक्तम निर्विकल्पम, और वो कैसे हैं भगवान, एकमात्र ज्ञान स्वरूप है, प्रकृति से परे हैं, अदृश्य और निर्विकल्प हैं, उनको कोई देख नहीं सकते। इतना आसान नहीं कि भगवान को हम दर्शन कर सकते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, जो तीन गुण से परे नहीं है वो देख नहीं सकते। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, तो कौन देख सकते हैं। जैसे आपने, आप लोग प्राय भक्त लोग गजेंद्र स्तुति पाठ करते हैं ना, तो गजेंद्र स्तुति में एकांत गजेंद्र जी कहते हैं, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति एवै भगवत् प्रपन्ना अत्यद्भुतं चरितं सुमंगलं गायन्त आनंद समुद्रमग्न। हरे कृष्ण। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति एवै भगवत् प्रपन्ना अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र मग्न। फिर कहते हैं तमक्षरम ब्रह्म परम परेशम अव्यक्तम आध्यात्मिक योग गम्यम। ऐसे भगवान जो अव्यक्त हैं, जिनको व्यक्त नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेख नहीं सकते, अलेख हैं, अव्यक्त हैं, अलौकिक हैं, उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे दर्शन कर सकते हैं। कहते हैं आध्यात्म योगम, आध्यात्म योग अर्थात भक्ति योग से, यही श्रवणम कीर्तनम स्मरणम इत्यादि, ये भक्ति योग से ही उनको हम दर्शन कर सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। अव्यक्तम आध्यात्म योगम अतीन्द्रियम सूक्ष्ममिवाति दूरम अनंत माध्यम परिपूर्णमीडे। ऐसे अनंतम भगवान को ईडे, हम गजेंद्र जी कहते हैं हम पूजा करते हैं, सूक्ष्म है अतीन्द्रियम सूक्ष्म इवाति दूरम, एटम से भी परमाणु से भी सूक्ष्म है, और साथ ही साथ इतने दूर है, कहां वैकुंठ और कहां हम, इतने दूर है देख भी नहीं सकते। लेकिन वही गजेंद्र जी कहते हैं अध्यात्म योगम, अर्थात भक्ति योग से ही उनको देख सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। यही बात यहां कह रहे हैं, देखिए उनके स्वरूप को कोई विकार नहीं आता, अतएव उनका जीव से समान कोई नहीं सकता। हरे कृष्णा कृष्णा। और क्या कहते हैं कि ये जो जीवात्मा हमारे हृदय में है, परमात्मा के साथ है, सॉरी ये जो परमात्मा जीवात्मा के साथ है उनके बारे में कहते हैं, वो जीवात्मा के साथ है। एक वृक्ष में दो पंछी रहते हैं लेकिन जीवात्मा के जैसे नहीं है, थोड़ा भिन्न है, बहुत भिन्न है। इसलिए वो कहते हैं कि श्रुति से और एक श्लोक कोट करते हैं श्रीधर स्वामी पाद, तयोर अन्य पिपलम स्वादक्य अमित स्थिति, उन दोनों में जीवात्मा कर्म फल को भोग करता है लेकिन परमात्मा नहीं, परमात्मा किसी भी कर्म फल के भोगी नहीं है, भोग करते नहीं है, ये विशेषता है। अतएव योगी जन जिस परमात्मा की योग के द्वारा उपासना करते हैं उनको नमस्कार करते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी श्लोक में कहते हैं। अच्छा एक बात है कि इस श्लोक में धीर शब्द आया है,
लाइट लाइट हो
गया, ये जो धीर शब्द है इसके ऊपर थोड़ा सा हम बाकी के जितने समय हैं हम चर्चा करते हैं, क्योंकि इसमें बताया गया है कि देखिए भगवान की भक्ति करने के लिए, अर्थात यहाँ जो ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, भगवान ऐसे अलौकिक हैं या इतने दूर हैं लेकिन इनको प्राप्त किया जा सकता है धीर से, तो इसके बारे में शास्त्रों में वर्णन है कि धीर क्या है। इस ये धीर शब्द गीता में भी आया है, आप में से कोई विद्वान या विदुषी बताइए तो धीर शब्द कौन से श्लोक में आया है। हाँ पूरा श्लोक बताइए, उसके बाद का श्लोक 2.14 2.14 मात्रा स्पर्शस्तु सुख दुख दा तांग चितिक, हाँ मात्रा स्पर्शस्तु कौन तय शीतोष्ण सुख दिखदा धीरस्तत्र नोमयति। तो ये जो जो हमारे जो भक्ति का जो सफर है, हम कितने उस सफर में उस रास्ते में कितना दूर तय कर चुके हैं, ये लैंडमार्क है, मापदंड है। यहां से हम दिल्ली जाना चाहते हैं कितना दूर है, 170 कितना दूर है ससुरबु, 170 140 किलोमीटर है। तो यहां से हम निकले तो हम लैंडमार्क देखते हैं कितना दूर और बचा है, दिल्ली कितना दूर है। उसी प्रकार से हमारा जो लक्ष्य है, मंजिल है भक्ति में, हमें प्राप्त करना है श्री श्री राधा श्याम सुंदर के चरणों को, प्रेम भक्ति प्राप्त करना है। तो वो जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मापदंड है, जो लैंडमार्क है, वो ये श्लोक है 2.14 मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतो उष्ण सुख दुखदा आगमा आपायन अनित्य स्तांग स्थिति भारत। जो धीर व्यक्ति है वो इंद्रियों से उत्पन्न जो सुख दुख है, सर्दी गर्मी है, अभी इस वृंदावन में कितने ठंड होती है, अब गर्मी चालू हो जाएगी खूब सर्दी होती है और खूब गर्मी होती है, तो शीत उष्ण मान अपमान हानि लाभ सुख दुख जो भी है, जो ये सब जो जितना सहन किया है वो उतना दूर तय कर किया है, मतलब उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उतना दूरी जो है तय किया है, तो ये धीर है, धीर व्यक्ति। धीर व्यक्ति के बारे में शास्त्रों में बहुत वर्णन है, जैसे आपके यहाँ वृंदावन धाम में श्री श्री राधा गोविंद मंदिर है जो आज जयपुर में, राधा गोविंद जी, उस राधा गोविंद मंदिर में एक पुजारी थे, जानते हैं उनका नाम क्या था? हरिदास पंडित। हरिदास पंडित, इसके बारे में कहां लिखा हुआ है? एग्जैक्टली चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी एक भक्त कैसे होते हैं उनकी गुणगान करते हैं। भक्त किसको कहते हैं, भक्तों के गुण क्या होता है, उसका वर्णन करते हैं चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में। राधा गोविंद मंदिर के पुजारी, इसको कहते हैं कसौटी, भक्त हो तो ऐसी। उसके बारे में बहुत सुंदर, वैष्णव के सारे 26 गुण उस भक्त में था। तो उसमें एक गुण है धीर, तो कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। तो शास्त्रों में ऐसे अलग अलग उदाहरण हैं। जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं कि कौन ऐसे व्यक्ति है जो धीर हैं, ऐसे अनेक हैं, उसमें से एक है श्री प्रह्लाद महाराज। प्रह्लाद महाराज के असंख्य गुण थे, असंख्य, छोटे से बच्चे थे लेकिन असंख्य गुण थे। उसमें से कुछ गुणों को आज हम स्मरण करेंगे, कैसे वो धीर थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, या नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को, इन गुणों को श्रवण करने से व्यक्ति के मन में एक लोभ जागृत होता है, क्या कभी हम इस गुणों को थोड़ा रंच मात्र में भी अपना सकते हैं, कम से कम सुने तो सही, श्रवण तो करें। कैसे प्रह्लाद महाराज धीर थे, कहते हैं नोद्विग्न चेत व्यसनेषु, सातवें स्कंद का श्लोक है, चौथे अध्याय का, नोद्विग्न चेत व्यसनेषु निस्पृह श्रुतेषु दुष्टेषु गुणेषु अवस्थ दृक् दान्तेन्द्रिय प्राण शरीर सदा प्रशांत कामो रहिता सुरो सुर। प्रह्लाद महाराज कहते थे, पहले कहते हैं कि व्यसनेषु उद्विग्न चित्तो नो। प्रह्लाद महाराज कैसे थे, बड़े से बड़े कष्ट, बड़े से बड़े विपत्ति में भी कभी घबराए नहीं। देखो धीर पुरुष कैसे होते हैं, धीर व्यक्ति कैसे होते हैं, कितना ही बड़ा विपत्ति आ जाए, मतलब शरीर के ऊपर कष्ट आ जाए, शरीर में भयंकर बीमारी आ जाए, अपने स्वजन का देहांत हो जाए, बिजनेस फ्लॉप हो जाए, कितना बड़ा घोर अपमान हो जाए, लेकिन व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में घबराए नहीं, इसको कहते हैं धीर। तो पहला गुण सुनिए, न उद्विग्न चित्त व्यसनेषु। प्रह्लाद महाराज के ऊपर क्या विपत्ति नहीं आई। कई कई भक्तों के जीवन में, इस कोरोना काल में कई भक्तों के जीवन में ऐसे हुआ कि माता पिता हैं और पुत्र चले गए, ऐसा भी हुआ है, और बेटा है और घर के सारे दिवंगत हो गए, ऐसा भी हुआ है। लेकिन व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। सुनते हैं ना आप लोग, श्रीवास पंडित के एक ही पुत्र, श्रीवास पंडित के पुत्र देहांत हो गया और गौर निताई उनके आंगन में कीर्तन कर रहे थे, लेकिन श्रीवास पंडित एक शब्द भी बोले नहीं, और खुद गौर निताई महाप्रभु लगा उनको कि कुछ तो समस्या है। फिर श्रीवास को पूछते हैं तो भक्त लोग बताते हैं कि श्रीवास के पुत्र का देहांत हो गया, अपने ऐसा तो मतलब तुलना भी नहीं कर सकते, लेकिन थोड़े समय के लिए जरा अपनी जगह, अपनी स्थिति को श्रीवास के जगह पे रख के देखिए। एक बेटा है, घर में संकीर्तन चल रहा है, नामहट प्रोग्राम चल रहा है, और उस समय उस बेटे का देहांत हो जाता, बीमारी नहीं कह रहे हैं, देहांत ही हो जाते, पूरा शरीर छोड़ देता है, लेकिन फिर भी श्रीवास पंडित देखिए ऐसे ही नहीं कहते हैं गौर निताई कि आज से हम तो आपके बेटे हैं। गौर निताई जिसके पुत्र हैं उनके कहना क्या है, इसको कहते हैं व्यसनेषु उद्विग्न, स्वजन के देहांत हो जाता है, शरीर में भयंकर बीमारी आ जाता है। आजकल सोशल मीडिया में बहुत अच्छा एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, मुझे इतना अच्छा लगा, हमारे परम पूज्य कदमकानंद स्वामी महाराज के, आप सब जानते ही हैं वृंदावन में महाराज जी कैसी स्थिति में है, कैसे वो अपने अंतिम क्षण बिता रहे हैं यहाँ भगवान के धाम जाने के लिए। महाराज जी एक वीडियो में मैं देखा, उसमें वो कहते हैं कि जस्ट चैंटिंग 16 राउंड एंड मैकेनिकली, तो कितना अच्छा सेंटेंस है, कहते हैं जस्ट चैंटिंग 16 राउंड समहाउ और अदर मैकेनिकली एंड समहाउ अदर फॉलोइंग द रेगुलेटरी प्रिंसिपल इज नॉट इनफ। महाराज कहते हैं, है ना, कल हम सुन रहे थे कि केवल किसी तरह से बताया गया है नियम पालन करने के लिए आया है, किसने क्या बोलते हैं भगवान जाने, राम भी पता नहीं चलेगा, कहते ना राम जाने, ऐसे किसी तरह से खींच खांच के एकदम हो गया सोलह माला कंप्लीट और बेड बैग को ऐसे रखते हैं कि अगले दिन पार्किंग में कहां रखा ढूंढना पड़ता है, बेड बैग कहां गया मेरे, ऐसे इस तरह से हम जो किसी तरह से कंप्लीट कर देते हैं या और फिर बस बताया गया है नियम पालन करना है तो नियम का पालन कर लेते हैं, इससे इतना टेंजिबल रिजल्ट नहीं मिलेगा, इतना लाभ नहीं होगा। महाराज कहते हैं अपनी क्वालिटी को बढ़ाना चाहिए जबकि गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए, नियम पालन में और निष्ठावान होना चाहिए। भक्त संग हमें क्या नहीं मिला है बताओ, यहां इस यहां जो रहते हैं कितना सौभाग्यवान है, भक्त संग, भागवतम क्लास, द मोस्ट ब्यूटीफुल डिटी ऑफ द एंटायर क्रिएशन, राधा श्याम सुंदर कृष्ण बोल रहा हूं, विग्रह सेवा, और आप थोड़ा मन हुआ तो यमुना किनारे चले जाइए, थोड़ा मन हुआ तो गिरिराज चले जाइए, धामबास, सब कुछ पांचों के पांच साधन यही होता है। और ये सब प्राप्त होने के बाद भी हम अगर लाभ नहीं, देखिए महाराज विदेश से आए हैं यहां अपना अंतिम समय देने के लिए, बिताने के लिए, पूज्य राधा गोविंद महाराज जी गुरु महाराज, पूज्य जयपत स्वामी गुरु महाराज, कैसे शरीर आधा शरीर काम नहीं कर रहा है लेकिन धीर है, कितना धीर है देखिए, हाँ उनकी क्या कहना, ऐसे स्थिति में भी परम पूज्य जयपत स्वामी महाराज भक्ति वैभव करके सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं, फोटो देखें आप, है ना, बताइए, हम लोग तो भक्ति शास्त्र भी अभी तक किए भी नहीं होंगे, पढ़ाई में हम लोग थोड़ा कतराते हैं ना, पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन महाराज ऐसी स्थिति में भी भक्ति वैभव करके सर्टिफिकेट प्राप्त किए इस कौन से, देखिए, तो कहने का अर्थ है कैसे धीर व्यक्ति होते हैं, यही एक गुण है, उद्विग्न चेत व्यसनेषु, किसी भी परिस्थिति, प्रभुपाद जी के जीवन में देखिए बिजनेस पूरा फ्लॉप हो गया, बिजनेस पूरी तरह से जीरो, प्रभुपाद जी एकदम निस्सहाय और वही सोचने लगे कि यही शायद भगवान का संदेश है कि मुझे प्रचार के लिए संपूर्ण जीवन देना है। भक्तों ऐसा मत सोचिए कि भक्ति करने से सब कुछ गुड्डी 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 हो जाएगा सब बृहस्पति हो जाएंगे, नया कई समस्याएं आएंगे, आश्रम के भक्तों को भी बहुत समझ, ऐसा मत सोचिए आश्रम में रहने वाला बहुत बढ़िया शान शौक, 9 बजे कभी सोचते भी नहीं कि आज क्या बनाए, गर्म गर्म मिल जाता है प्लेट में, कभी कोई सोचता भी नहीं है, लेकिन जितना कष्ट बाहर गृहस्थ भक्तों के उतना आश्रम में भी है, कई प्रकार के तनाव कष्ट होते हैं, मन की विचलित होते हैं, और कई लोग कितने प्रकार के कष्ट देते हैं, किसी भी परिस्थिति में कितना भी बड़ा विपत्ति आ जाए लेकिन न उद्विग्न चेत व्यसनेश, फिर आगे कहते हैं देखिए निस्पृह श्रुतेषु दृष्टेषु, मन में किसी प्रकार की लालसा नहीं थी, प्रहलाद महाराज कैसे थे, श्रुतेषु सुने हुए, दृष्टेषु देखे हुए, किसी भी विषय सुख के प्रति उनके मन में लालसा नहीं थी। देखे हुए का अर्थ है कि कितना रूप दिखता है ना, सुंदर रूप, कोई स्त्री हो या पुरुष हो, उस रूप के प्रति व्यक्ति आकर्षित हो जाता है, देखे हुए, इस आंखों से हम क्या नहीं देखते हैं, इस आंखों से बहुत कुछ देखते हैं। अरे छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, आजकल सब आप लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, सोशल मीडिया में सब व्हाट्सएप फेसबुक, इसमें आप स्क्रॉल कीजिए कुछ ना कुछ पॉपअप हो जाएगा, हरे कृष्ण कुछ ना कुछ एक हरि बोल, कुछ ना कुछ एक इंद्रिय तृप्ति के साधन ऐसे प्रकट हो जाते हैं, आप एकदम डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप रेलवे टिकट बुकिंग कर रहे हैं आप वो नहीं देख रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एक ऐसे हरे कृष्ण आ जाता है और आप सुनाई दे रहा है सबको, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. லக்தா யாக்கு ஹத்தோடா லேக்கு பேட்னா படேகா. தோ மே கே ரா தா கி ஜேசே ஜோ ஆஜ்கல் வோ ஸ்மார்ட் வாட்ச் பேன்தே நா, வோ பி சோட்டா சா சோட்டா குச் பி எக் சீஜ் ஹே, வோ ஆப்கே ஃபேஸ்புக் மே இன்ஸ்டாகிராம் மே ஏசே பாப் அப் ஹோ ஜாயேங்கே ஔர் மன் விசலித் ஹோ ஜாதா ஹே. அரே ஆஃபர் ஆயா ஹே இத்னா, 10,000 கா கடி கேவல் 500 ரூபே மே ஔர் இத்னா அச்சா மத்லப் சீஜ், குச் மொபைல் ஹோ ஹேண்ட்செட் ஹோ, வோ கேசே ஹம் ஆகர்ஷித் ஹோ ஜாதே ஹே. वो जो एड देखते हैं, एड आता है ना मोबाइल स्क्रीन पे, वो देख, इसलिए यहाँ प्रहलाद महाराज के लिए बताया गया है, देखे हुए कोई भी विषय के प्रति उनके मन में लालसा नहीं होती. यही तो हमारे मन को आकर्षित कर लेता है कि अच्छा ऑफर है, और फिर हम वो लेना चाहते हैं लेकिन एकदम धोखे में पड़ जाते हैं. कई बार मेरे साथ भी हुआ है, कई बार सबके साथ. हम सोचते हैं कि अच्छा कितने कम कीमत में मिल जाता है, चलो इसको ऑर्डर दे देते हैं, और पूरा वो साइट, वो प्रोडक्ट वो आता ही नहीं, धोखा है. तो देखे हुए और सुने हुए. सुने हुए क्या है, कोई कुछ कहता है हमें, अरे प्रभु जी, अरे माता जी, आपको पता है वहां जाना है, वहां बहुत अच्छा है, यहाँ ठीक नहीं है, ये तो यहाँ बहुत समस्या है, उधर जाना है, वहां थोड़ा देख के आएंगे. कई लोग दूर दूर से आते हैं वृंदावन धाम की यात्रा करने के लिए, तो यहाँ भगवान के जन्मभूमि मथुरा में वो कम जाते हैं, और जाते हैं मरघट में, आगरा ताजमहल में. क्यों? हाँ देखना है, थोड़ा एक बार तो देखना है. और सुनते हैं, अरे आप मथुरा गए थे, आगरा नहीं गए, ताजमहल नहीं, जिंदगी बेकार हो गई, ऐसे सोचते हैं. लेकिन उनको कहना जा रहे, कम से कम मथुरा जन्मभूमि तो जाओ, मरघट पे जाके क्या करना है. सही में मैं कितनी बार आगरा गया हूँ प्रचार के लिए, लेकिन कभी इच्छा ही नहीं हुई. क्या करना है उधर, मुझे किसी ने कहा तुम्हें जनेऊ बदलना पड़ेगा, मैं डर गया और नहीं जाना. एक पुजारी बोले उधर जाओगे तो तुम्हें जनेऊ बदलना पड़ेगा धागा. तो कहने का अर्थ है कि दृष्टेशु श्रुतेशु, प्रहलाद महाराज देखे हुए और सुने हुए किसी भी विषय के प्रति लालसा नहीं थी. बिना परखे, बिना शोध किए, कभी भी किसी भी ना रूप के प्रति ना सुने हुए किसी विषय के प्रति उनका लालसा नहीं था. और क्या कहते हैं, दांत, दांत इंद्रिय प्राण शरीर थी. उनका मन और इंद्रिय सभी नियंत्रित था प्रहलाद महाराज का. देखो धीर व्यक्ति कैसे होते हैं, मन और इंद्रियां सब नियंत्रित थे, मैंने अपने वश में थे. वो ऐसे बेलगाम घोड़े के तरह इधर उधर भागते नहीं थे. जहां भी कैसे मन और इंद्रिय कभी भागते हैं तो कछुआ की तरह, भगवान उदाहरण देते हैं कछुआ ना, गीता में क्या उदाहरण देते हैं, कछुआ, टॉर्टोइज. तो कछुआ की तरह अपने इंद्रियों को समेट लेते थे. तो सदा प्रशांत काम, और क्या थे, इंद्रिय प्राण शरीर थी. इंद्रिय प्राण शरीर थी, मन बुद्धि इंद्रिय सभी नियंत्रित थे. और सदा प्रशांत काम, अर्थात वो मन में कभी किसी व्यक्ति की वस्तु की कामना नहीं होती थी, अर्थात सटिस्फैक्ट थे. ये श्लोक प्राय मैं कहता हूं, कौन व्यक्ति सुखी हो सकता है जो संतुष्टि, और संतोषी कौन है, कहते हैं ना, संतोष त्रिसु कर्तव्य सुदारे भोजने धनी. तीन चीज में व्यक्ति को संतोष रहना है, अपने पति या पत्नी से, एक भोजन. आज हमारे भाग्य में 9 बजे प्लेट में क्या मिलेगा, उसमें दो हो गए, और तीसरा धन. कितना धन हमारे पास है, कितना धन हमारे पास होगा, इसमें व्यक्ति को संतुष्ट रहना है. नहीं तो अगर अंबानी से भी बड़ा बन जाए फिर भी चाहत पूरी नहीं होगी, कहेंगे और ये दिल मांगे मोर, इसको कहिए चाहिए कुछ और चाहिए और. तो कौन से तीन चीज, सुदारे अपनी पति पत्नी से, अपने भोजन से, और धन से. और कौन से तीन में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, स्वाध्याय जप दानी संतोष नैव कर्तव्य. स्वाध्याय अध्ययन जितना भी करे कम है, अब ये नहीं सोचना चाहिए भक्ति शास्त्री हो गया बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं। भक्ति वैभव कर सकते हैं, भक्ति वेदांत कर सकते हैं, भागवत पढ़ सकते हैं। हमारे इस्कॉन के सन्यासी लोग देख रहे हैं ना, मैंने कहा महाराज जी भक्ति वैभव कर रहे हैं। जित हर रोज हमारा स्वाध्याय होना चाहिए, रोज कुछ ना कुछ शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए। स्वाध्याय जप, जप जितना भी करे कम है, जितना भी हमारा संख्या पूर्वक हरे संख्या पूर्वक नाम हम जप करते हैं वो तो करे ही, लेकिन सदैव इस जीवा पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे निरंतर गुनगुनाते रहना चाहिए, जप करना चाहिए। और दाने, दान का अर्थ है जब भी अवसर मिले कुछ ना कुछ दान देना चाहिए, जिसको भी आवश्यकता, मंदिर में आए, वृंदावन धाम में आए, किसी वैष्णव साधु भक्त, गौ सेवा, संत सेवा, गीता सेवा, हर स्थिति में जब भी अवसर मिले दान देने की एक कला होनी चाहिए। तो मैं क्यों कह रहा हूं कि नीति शास्त्र में कहते हैं संतोषी सदा सुखी, संतुष्ट व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। तो प्रहलाद महाराज ऐसे थे कि प्रशांत काम, बहुत विचलित नहीं थे, अब ये करना है, अभी वो करना है, अभी वो करना है, दस चीज में, दस चीज को मन में रख के ऐसे नहीं थे, बहुत सेटिस्फाइड थे। कंटेम्प्ट इंग्लिश में एक बहुत अच्छा वर्ड है, वो बहुत ही एकदम परिपूर्ण थे, संतुष्ट थे। फिर रहिता सुरासुर, असुर कुल में भी जन्म होके वो कभी असुर के जैसा नहीं थे। प्रहलाद महाराज असुर कुल में जन्म हुए थे, कम से कम हम तो मनुष्य योनि में जन्म हुए हैं। तो कहते हैं रहिता सुरासुर का अर्थ है कि प्रहलाद महाराज में आसुरी गुण नहीं था। आसुरी गुण अर्थात सिद्धर स्वामी पाद कहते हैं मच्छरता, मच्छर मच्छरता अर्थ ईर्षा, दूसरों के उत्कर्ष में असह्य होना। दूसरा व्यक्ति किस कभी किस विद्या में, ज्ञान में, धन में, प्रचार में, पढ़ाई में, सेवा में, जप में, साधना में अगर कुछ अच्छा किया तो हमारे मन में कभी कई बार मत्सरता आती, अरे इतना उसे तो हमारे एक साथ ज्वाइन किए थे, हम दोनों एक साथ ज्वाइन किए थे, आज वो व्यासासन में बैठ गया और मुझे तो कोई पूछ भी नहीं रहा है, हरे कृष्णा। तो इस तरह का भाव नहीं था, इसको कहते हैं मच्छरता, मच्छरता अर्थात मच्छर हिंदी में थोड़ा सा मिला जुला शब्द है, मच्छर मच्छर है ना, मच्छर मच्छर। उसका संतुष्टि किसमें है कि दूसरों के शरीर से जाके खून चूसने का है ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने जीवन में संतुष्ट नहीं रहते हैं, उसने क्या किया, वो कहां गया, उसका क्या चल रहा है, हमेशा दूसरों के जीवन में दखल हस्तक्षेप करना और फिर वो ईर्षा द्वेष रखना। तो इस प्रकार से आज हमने सुना कि ऐसा है धीर व्यक्ति, तो ऐसे धीर व्यक्ति को ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा जी जो स्तुति कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज जैसे धीर व्यक्ति हमने कितने उदाहरण सुना, हमारे इस्कॉन के इतने सारे गुरुवर्ग, हरे कृष्ण वरिष्ठ भक्त सन्यासी जो अभी भक्ति कर रहे हैं 40-50 साल से, हरे कृष्ण। तो इन लोगों के जीवन में भी हम देख सकते हैं कि कैसे वो धीर हैं और भगवान को प्राप्त करने के लिए अधीर अतुर हैं, हरे कृष्ण। ये अभी जवाब दे रहा है, तो मैं यहाँ विराम देता हूँ, समय भी हो गया। इसको कोई जिज्ञासा है तो एक पूछ सकते हैं, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कदम कानन महाराज इंग्लिश में बता रहे थे कि जो हम साधना करते हैं उसमें केवल यांत्रिक रूप से किसी तरह से सोला माला जप कर लेना खींच खांच के और नियमों को पालन करना है करके कर लेना और केवल इसी से बात बनने वाली नहीं है। तो कहते हैं कि जब हम भगवान का नाम जप करते हैं उसमें क्वालिटी अटेंटिव ध्यान पूर्वक जप करने के लिए प्रयास किए करें, जैसे हम मंदिर हॉल में बैठ के जप करते हैं, एक स्थान में बैठ के प्रयास कीजिए, कम से कम चार माला एक आसन में, मैं कह रहा हूं कम से कम एक आसन पे कम से कम चार माला, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए आठ माला, और माला लिए और इधर पूरा ब्रह्मांड परिक्रमा कर रहे हैं, ये नहीं, परिक्रमा की बात अलग है, लेकिन जिस जगह पे जिस स्थान पे बैठते हैं पहले आसन को जीतिए। तो इस तरह से हमारे जप की गुणवत्ता को बढ़ाना है, क्वालिटी को एक, और दूसरा कहते हैं जो नियम दिया गया है हमें कुछ नहीं करना है, नो 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 नो, है ना, उसको ईमानदारी से पालन करना है, और जो बताया गया यस 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 यस, अर्थात सुबह उठना है, आरती में आना है, भागवत क्लास में श्रवण करना है, भगवान की तरह तरह की सेवा करना है, भागवत पठन करना है, तो ये सब को ईमानदारी से करें। और दूसरा बहुत सुंदर बात कदम कानन महाराज अंतिम अंत में कह रहे थे कि हर एक साधक को, हम में से हर एक साधक को सावधानी बरतनी है। भाई किस बात की सावधानी? महाराज कह रहे थे सावधानी बरतने, कहीं मैं माया में ना फंस जाऊं, कहीं मेरा चित्त माया में ना चले जाए, इसलिए हमेशा अलर्ट रहना है। तो ये अगर हम सावधानी बरतते हैं तो आज देखिए महाराज कैसे उन्नत स्थिति में है, उस प्रकार से हमारी भी ऐसी स्थिति हो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण की।